Director of Pakistan State of Press Conference of October 19, 2007, said that your party believes in tolerance, gender equality, and minority representation. This is an example of what?
Option bhi to batayenge.
Okay, party attitude service. It can't be an attitude service. Survey is usually taken from the customers or the employees. And who are the employees of the country or the party?
People.
You see the people who are representing this. It's not only that. It's the vision of the party leader. So ye party attitude survey nahi ho sakta. Party value hierarchy. Party ability, job fit. You know what the job fit?
Job
fit. Organization job fit बना था तो organization की जगह party आ गई. So party job fit means when you are hiring an employee, you need a job fit कि भाई वो बंदा आपके लिए suitable ही है या नहीं. So this was the fourth thing that was party value system. It was a party value system. Okay. Giving an extra duty to John other than his normal routine work is an example of
enlargement.
Standard and Chartered forces its employees to pass a smile whenever a customer comes and visits the bank. This is a practice of learning emotional resonance, reinforcement, emotional labor, or shaping behavior. But it was only best you have to identify that best for visibility. Your management by walking around is an example of employee involvement program, punishment, employee recognition, reinforcement, organization
change. Reinforcement.
Employee engagement inherits from motivation, job involvement, job satisfaction, organizational commitment. Engagement, employee engagement,
commitment.
The commitment. किसके तरफ से commitment करें? Organization. जब वो देखेगा organization की तरफ से commitment है, तभी तो यार याद नहीं है हमने पांच levels किए हैं. ये तो simple से अगर book में जाए तो तुम्हें आंसर मिल जाए. Simple book में आंसर लिखा था. Stay. Okay. As my boss doesn't like older women, he always scolds me, and so today this turned my mood off, and I started shouting on my husband as well. Mrs. Johnson claimed. So this was a claim of Mrs. Johnson. Which attitude component is highlighted in the entire state? So basically all the three elements. The cognitive, the affective, and the behavior. It is a behavior, not attitude. So because of the reason is that if it is a behavior, then you have to take a behavior when you analyze the situation over the period of time given. वो ज्यादा लंबे अरसे की होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आप एरिया नहीं बता रहा है क्या आपका की होगी तो दैट वाज द रीजन सो ओके वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट एन ओरल कम्युनिकेशन टू ऑफ फॉल्स
फॉल्स
फॉल्स वर्बल कम्युनिकेशन जो है चार तरह की हो सकती है इट कैन बी ओरल इट कैन बी रिटन एज व्हाट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व वर्ड तो वर्ड ओरल कम्युनिकेशन में भी होते हैं और वर्ड रिटन कम्युनिकेशन में भी होते हैं सो इट्स बेसिकली
फॉल्स
ओरल कम्युनिकेशन इज व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन चलो लेट्स डू इट ऑन द अदर वे
ट्रू
ओरल कम्युनिकेशन इज व्हाट एन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रू ओरल इज ऑलवेज वर्बल ओके ठीक है एमसीक्यू तो हमने डिस्कस कर लिया बाकी पेपर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे
अभी कर लो
एमिरेट्स वाला केस कर आपको केस नहीं याद होगा ना मेरे पास जो ये वाले पेपर नहीं है ये क्या एमिरेट्स वाला याद है ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू अप्लाई विद किसी
ने परचेस
प्रॉब्लम क्या थी
परचेज
प्रॉब्लम
है
ऊपर सबसे ऊपर इसका कोड लिखा है एवरेज लाइकली टू बाय अप टू 100 मिड साइज थिंग्स दैट वाज द प्रॉब्लम ओके इफ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वी विल से आइडेंटिफाई Identify the issue guys. Upon what basis should Emirates go and buy the plane?
Fuel efficiency and increased capacity.
And mind it, whenever you talk about rational decision making models, you never discuss resources. लास्ट भी बताया था कंस्ट्रेंट भी बताए थे छह कंस्ट्रेंट होते हैं आपके कि मैक्सिमम पे ऑफ मिलेगा आपको नो कंस्ट्रेंट आपकी जो चीजें होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके डिसीजन क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा ये सारी अजम्पशन होती है जब आप रेशनल मैंने इसमें एक चीज बी पार्ट की रखा था वो बी पार्ट ये था कि इस अजम्पशन में क्या चीज इंक्लूड करें तो ये रेशनल मॉडल नहीं रहेगी मैंने कहा अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया तो जो लोग घर की पहले क्वेश्चन में भी रहने वाले वो नहीं कहेंगे उनको पता लग जाएगा कि कॉस्ट जो है वो गलत है ठीक है एलोकेट
बेस इसमें टाइम भी तो हो सकता है
टाइम
इसमें
टाइम
नहीं इसमें से
सब दो ही दे रहे
नहीं टाइम
टाइम नहीं देते लेट्स सी आपने टाइम कैसे लिए टाइम को नहीं देता
टाइम के रेस के लिए जा सकता
है टाइम तो देखो मतलब क्या
नहीं पा रहे उसमें बेस पे डिसीजन चेंज हो सकता था
एक
के उसने कहा है कि
एमिरेट्स is looking for pushing the manufacturers to reconfigure the aircraft to increase capacity and make them more fuel efficient. इसे जब भी बात करी ना सबसे विंडोज की जो भी बात की इसमें कभी टाइम की बात नहीं एमिरेट्स में कभी टाइम की बात नहीं इसमें हमेशा सिर्फ ये दो चीजों की बात की पूरे केस में अगर आप पढ़ेंगे ना अपनी आप कौन सा एनालिसिस कर सकते हो
नहीं सर आगे टाइम की बात है
वो
एंड में कहा है कि जो है ना वो
जब हम पेपर आपके एग्जाम पेपर दे रहे हो वेट दो अगर सिर्फ यही दो क्राइटेरिया की फेट व्हाट वुड यू हाउ मच वुड यू गिव
दोनों
को इक्वल दे दे दोनों को सुनने की वेट दे दे दोनों को इक्वल दे दे अच्छा 60-40 उनकी भी मैं नंबर निकालता क्यों मे बी दे परसेप्शन डिफरेंस मैं लेकिन जिसने ऐसा किया 70 और 30 तो वो बिल्कुल डिफर कर रहा था क्योंकि दोनों का सबसे हर समय जब भी बात की तो दोनों की एक साथ बात करोगे तो अगर मैं हूँ या फिर और है चले कि 60-40 दे सकता है 40-60 दे सकता है लेकिन आइडियली इट शुड बी 50-50 40-60 भी मैं राइट करता हूँ
पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं कब आ रहा शो क्या होगा
अगर आप उसको एक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि इंटर शो कर दिया तो कौन सी डिसीजन मेकिंग हो फिर रेशनल डिसीजन मेकिंग पे नहीं गया फिर आप अपनी घर पे लिख जाएंगे आपको दिया ही नहीं तक ये आपको पता होना चाहिए ना क्या चीज लेनी क्या नहीं चीजें लेनी जब रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है तो आप इंटरेस्ट पे नहीं जाते अदरवाइज मैं इंटरेस्ट पे लिख देता किसी की इंटरेस्ट तो मेरा हाई पॉइंट की तरफ आए एक पॉइंट रेशनल में भी हो सकता है पॉइंट आंसर निकलते हैं और निकलेगा पॉइंट आंसर लेकिन आपको क्या करना है बेसिकली रेशनल होने के लिए आपको जो डिसीजन क्राइटेरिया चूज किया आपको उसी में वैल्यूएट करना है अगर आप रेशनल होने के लिए तो हम पहले निकाल देंगे अगर आपने पहले निकालते तो बेटा वो रेशनल थोड़ी ना मतलब यही तो साहब तुम बात बताइए कि बाउंडेड रेशनैलिटी और रेशनैलिटी में क्या फर्क था आपने पहले निकालते कुछ चीज बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग बेस्ड ऑन एनीथिंग यू स्विच वन थिंग आउट If you switch one thing out, then you will not apply rational. Rational means that जितनी भी decision, जितनी भी आपको choices दो नहीं, आप हर choice को ले। अब लोगों ने क्या किया? बेवकूफी ये की कि Airbus Boeing 3750, Boeing 3750, Boeing Airbus, Boeing यार, करने की जरूरत ही नहीं कि दो रखते हैं Airbus या Boeing। अगर मैंने Boeing 3787 लिया, 3780 लिया, किससे लाया? किससे लिया मैंने दोनों कैटेगरी मच्छे करते हिसाब से तो यार वही अच्छा हम दो ही कंपनी की तरह से चूज कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि दुबई एमिरेट एयरलाइन कुछ प्लेन और आपको 100 बिलियन एटलीस्ट प्राइसेज मेटीरियल सोर्सेज या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बोइंग एंड एयरबस आर कंपनी तो अब दो की दरमियान कॉम्पिटिशन है तो मेक इट टू ओनली उसने मैंने गलती नहीं करी, बस उसे इतनी शंका हो जैसे सही बदनाम हो जाएगी।
इसमें सर टाइम इसमें से आएगा कि एयरबस के बाद रेडी है और
रिसोर्सेज को लेते ही नहीं है
नहीं इसके अंदर इसकी बेस के ऊपर
कभी भी नहीं कहा कि मुझे फैसला इससे पहले
टाइम डिलीवरी डिलीवरी टाइम
डेट
हाँ डिलीवरी डेट है हाँ उसने कहा है कि एयर
लास्ट
नहीं सर इसमें से ठीक है सर इसमें से ले सकते हैं कि एयरबस में ना रेडी है हाँ एयरबस इस वक्त रेडी है और बोइंग
मुझे लगता है लेट बी रीड अगेन मैं आपकी सारी पॉइंट आउट कर दूं
और अगर इसके इस तरह लिए मैंने
मैं दोबारा देख लूँ अगर टाइम होगा ना मैं डालूंगा लेकिन जब तक अगर मैं सिर्फ बिजनेस डिसीजन मेकिंग मॉडल की बात करता हूँ तो मैं हर कंस्ट्रेंट को भूल जाता मैं कभी टाइम लिमिट नहीं देखता मैं कभी कॉस्ट को नहीं देखता मैं कभी कभी इन सब चीजों को नहीं देखता
अगर उसको मिनिमम दिया हुआ है अगर 2% 3% पर दिया टाइम
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपने कहीं पर जेन्युइनली मुझे किया है मैं भी मैं केस को ओवरलुक कर रही हूँ मैं दोबारा
देखूंगा।
अब आपने दोनों को इवेल्युएट किया तो अल्टीमेट अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या होगा सर कहता है आपने इवेल्युएट कर दिया बेस वॉल्यू इवेल्युएशन आपने कुछ पॉइंट उसको दे दिए और कुछ पॉइंट उसको दे दिया अगर आप देखा जाए तो आपने देखा होगा फ्यूल कैपेसिटी में किसी ने ज्यादा आगे नहीं तो तेज तो नहीं बढ़ सकते यू कैन गिव इक्वल मार्क्स और यू कैन गिव बोथ जीरोस व्हाटएवर यू लाइक
सर। लेकिन सीट की बात करिए तो मैं उसके ऊपर जो है ज्यादा कर सकता हूँ
लेकिन मेरे ख्याल से पॉइंट को ज्यादा एनी वेज अगर आप नहीं भी किए जा सकते हो ये सब परसेप्शन पे होता है कि आपने क्या परसीव किया जो आपको फर्क नजर आ रहा था ना वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी पे ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। और उसमें फिर जो आदमों का परिवर्तन है उसमें नंबर मैं दे दूंगा उसके अलावा मैंने कोई मोटिवेशन का केस दिया था उसमें मैंने आपसे तीन थ्योरी अप्लाई करी और क्या पूछा था मैंने आपसे कि वो आउटडेटेड था या नहीं था जी
सर 3 महीने में बंदे परमानेंट हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पे बैंक सेक्टर के अंदर भी होता है वहाँ 3 साल का लिखा हुआ था 3 साल बाद जाके परमानेंट होता
है
लेकिन
3 साल फिर उसके बाद समझते कि बहुत सारी नीड हुई मेरे को लेकिन बेसिक नीड तो होनी ओके ना भाई देयर आर टू बिग अनाउंसमेंट वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट इज वी हैव ऑलरेडी शिफ्ट मिस वन क्लास राइट एंड वी विल बी मिसिंग अनदर क्लास नॉट अ वीक आफ्टर नॉट ऑन 2nd ऑफ नवंबर बट ऑन 9th ऑफ नवंबर
सबमिशन
आई एम
सबमिशन
ऑन सबमिशन फुल यू हैव टू कम अप हियर अब आप लोग एक कर लो कि एक बंदे को देखो सबसे असाइनमेंट वो ला के सबको दे दो और किसी ऐसे बंदे को लेना कि वो
छापे
ला के ये ना करके जिसे छाप पहले उसके छाप और उसके छाप से कभी नहीं करके जाएंगे और दूसरी कभी नहीं करके होगा। अच्छा एक चीज ये है पहली बात होगी तो आई माइंड मिस 9th नवंबर क्लास ओके सेकेंडली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, थर्डली मुझे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक क्यूरी आई थी इंट्रोडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर राइट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली आइडेंटिफाई दी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है. इज इट अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, इज इट डिवाइडेड इन टू डिपार्टमेंट. You know what is a flat organization and what is a departmentalization? Okay. All basic organization structure ये बताती है कि आपकी organization के अंदर काम task कैसे join हुए, कैसे group किए गए हैं और कैसे coordinate करेंगे, कौन किससे coordinate करेगा. ये सारी चीजें आपको किसके थ्रू पता लगेंगी, organization के structure के. Organization के structure कि जो बेसिक बुनियाद होती है ना बनने की वो इन छह चीजों पे होता है. व्हाट इज दिस, व्हाट इज वर्क स्पेशलाइजेशन, हमने पढ़ा है स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज वर्क स्पेशलाइजेशन, कोर कॉम्पिटेंसी, नॉट ओनली कोर कॉम्पिटेंसी, द कॉम्पिटेंसी दैट व्हाट आर कोर कॉम्पिटेंसी. जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है ना वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है. जो प्राइमरी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है वो सिर्फ कॉम्पिटेंसी. वर्क स्पेशलाइजेशन आपको ये बताता है कि कौन कौन से एरियाज में आपके यहाँ जॉब अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में अगर SQA की जॉब अवेलेबल है, दिस मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ इट्स वर्क स्पेशलाइजेशन. क्वालिटी एश्योरेंस की यहाँ होती है जब ये वाली जॉब अवेलेबल. प्रोजेक्ट लीड, अगर ये एक जॉब अवेलेबल है या एक ये रोल अवेलेबल है, इसका मतलब है कि ये वाली जॉब इस जगह मौजूद है, ये वर्क स्पेशलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या बताती है, आपकी ये सारी जॉब्स मिलके कौन सा डिपार्टमेंट बना रही है. फॉर एग्जाम्पल SQA असिस्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बना रही है, ठीक है जी. योर प्रोडक्ट मैनेजर, योर प्रोजेक्ट मैनेजर मिलके एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की शायद एक ब्रांच बना रहे हैं. किस तरीके से वो आपने रिक्रूटमेंट ऑफिसर, सिलेक्शन ऑफिसर, कंपनसेशन ऑफिसर, ये सारे मिलकर शायद HR डिपार्टमेंट बना रहे हैं. Getting my point, right? आपकी वर्क स्टेशन ग्रुप, योर सॉफ्टवेयर अकोमोडेशन ग्रुप, ये शायद IT डिपार्टमेंट बना रहे. दिस इज ऑल डिफाइंड. स्पैन ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? एक आदमी कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली उसके अंदर कितने लोग आएंगे, दैट इज योर स्पैन ऑफ कंट्रोल. एक मैनेजर के नीचे डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करने वाले कितने लोग होंगे, वो इसका क्या होगा आपका बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल. चेन ऑफ कमांड, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अथॉरिटी. लाइन ऑफ अथॉरिटी इज बेसिकली योर चेन ऑफ कमांड. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन? अगर कंपनी सेंट्रलाइज है तो जिसका अंदर मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसी एक व्यक्ति के पास. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक के पास नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ गवर्नमेंट काम करता है कंपनी, जो सब पूरे पॉइंट पे एम्पावरमेंट देती है कि वो अपनी डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है. सेंट्रलाइजेशन की सिर्फ एक बंदे के पास या एक डिपार्टमेंट के पास या एक अथॉरिटी के पास या फ्यू अथॉरिटी के पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. जब आप अपनी इंप्लॉइज को एम्पावर कर देते हो कि वो अपनी डिसीजन खुद लें तो कंपनी जो है बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन. फॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि कितनी बहुत सारी कंपनी जो होती है वो फॉर्मलाइज होती है. आप कहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, रूल्स डिफाइंड होते हैं, रेगुलेशन डिफाइंड होते हैं, इवन द हाउ द वर्क वुड बी डन ये भी डिफाइन होता है. इंप्लॉइज के पास अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि वो किस तरीके से वो काम करें. अगर उसके पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं तो देन इट इज डीफॉर्मलाइज, अदरवाइज इट्स मोर फॉर्मल, ठीक है. अब इसकी जरूरत की एक्सप्लेनेशन देखिए, लेकिन व्हाट इज दिस द वेरी फर्स्ट स्टेप. हमने सात चीजें करी है ना, हमने करी है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, हमने कहा फॉर्मलाइजेशन और हमने क्या
डिपार्टमेंटलाइजेशन,
चैन ऑफ कंट्रोल, और हमने देखा डिपार्टमेंटलाइजेशन और हमने देखा चेन ऑफ कमांड और वर्क स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जब भी ऐसे बेसिकली वर्क स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज नंबर वन पॉइंट? सेंट्रलाइजेशन। डज इट एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन टू यू? ये क्या बता रहा है आपको? उसको उर्दू में समझे कि किस तरीके से आपकी कितनी डिग्री में आपकी जॉब जो है वो सेपरेटली डिवाइडेड है। तो ये क्या चीज बता रही है आपको?
डिपार्टमेंटलाइजेशन।
कौन चीज दिखाती है आपको? वर्क स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंट में क्या चीज होनी जरूरी है? इस वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या एक ऐसी चीज इंक्लूड करें जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बता
सकते?
इसके अंदर में क्या एक वर्ड ऐसा ऐड करूँ कि ये वर्क स्पेशलाइजेशन से डिपार्टमेंटलाइजेशन में चलता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होता है? बहुत सारी एक जैसी जॉब को ग्रुप कर दे एक साथ तो क्या बन जाएगा? वो डिपार्टमेंट बन जाएगा यार। सिंपल है ऑन वॉट बेसिस विद द जॉब बी ग्रुप दिस इज वॉट जो सेपरेट जो डिफरेंट जॉब है वो क्या है? हर जॉब से वो वर्क स्पेशलाइजेशन एक जैसी कुछ एक जैसी जॉब को वैसे भी जब कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा आपका बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन? व्हाट माय पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ये क्या चीज है? चलो चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, मैं किसको रिपोर्ट करना? मुझे चेन ऑफ कमांड बताइए। स्पैन कमांड मैं मेरे नीचे कितने लोग हैं ये स्पैन ऑफ कमांड है। मैं किसकी कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चेन ऑफ कमांड बताइए। अब समझ में आ रहा है दोनों का फर्क? पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड का जो अथॉरिटी है, जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो बेसिकली चेन ऑफ कमांड है। और कौन किसको डायरेक्टली कितने लोग मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे वो क्या है? बेसिकली आपका पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक के पास होगी या फ्लू के पास होगी तो कंपनी क्या है? सेंट्रलाइज है। एम्पावरमेंट दे दूंगा तो कंपनी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स रेगुलेशन प्रोसेसेस मेथड डिफाइन है उसी तरीके से करना है। नहीं डिफाइन है यू आर गिविंग योर ओन डिस्क्रिप्शन डिफॉर्मलाइजेशन। समझ में आती है सत्य?
ये जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो तो फोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। डिग्री टू विच सब सब डिवाइड तो नहीं होता उसका टास्क। आप ये पहली वाली जो
डिग्री टास्क सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब। एक जॉब को दूसरी जॉब से क्या चीज डिवाइड कर दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या हमने ये स्पेशलाइजेशन करी थी जब आप बात कर रहे थे यार? ठीक है, इफ देयर इज अ लेट्स सपोज लेट्स टेक एक बंदे को रोल दे दिया डोर मेकर का, ये बंदा सिर्फ डोर मेकर था। अब है तो वो भी कार्पेंटर लेकिन मैंने उसकी जॉब को डिवाइड कर दिया। मैंने डिवाइड दैट जॉब देन I'm going towards basically your work specialization. अब इसमें चेकिंग भी होती है कि ये जो कार्पेंटर है तो पॉलिश भी करेगा। कार्पेंटर की कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट पॉलिशिंग, बट इट्स अ सेकेंडरी एक्टिविटी दैट माइट बी यू नो दैट मैं शायद एक कंपनी अगर छोटी सी कंपनी होती है कार्पेंटर में शायद दूसरे बारे में भी देखूँ जो पॉलिशिंग में वायर उसको मैंने अपने यहाँ रख दिया कि मैंने बनाया ना वो पॉलिश वर्क आई हुई बिल्डिंग। सो इट माइट नॉट बी अ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ माइन but it might require that work to be done within my organization. These are the things. और आगे की तरफ देखे जाते हैं। अब मेरे हिसाब से वर्क स्पेशलाइजेशन आपको क्लियर हो गया। जो जो डिफरेंट जॉब टाइटल्स है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क स्पेशलाइजेशन को शो कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन किस किस बेसिस पे होती है? अब मैं आपको बता दूं डिपार्टमेंट डिजिटलाइजेशन अगर मैं डिपार्टमेंट बना रहा हूँ तो आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट, लेट्स टॉक अबाउट योर डिपार्टमेंट इन योर कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से डिपार्टमेंट, HR, QA, ओके ये क्या चीज है, बेसिकली दीज आर फंक्शन दैट अ कंपनी परफॉर्म, HR इज अ फंक्शन, फाइनेंस इज अ फंक्शन, मार्केटिंग इज अ फंक्शन, तो दीज आर बेसिकली व्हाट फंक्शन, so your department can be based on functions as well. Your department can be based on process, building process, okay, getting my point, process can be also there, infrastructure making process, yeah, purifying process, process may be up to you, process department hai, manufacturing department hai, ye jo aapne is tarah divide kar diya to aapne kis pe divide kar, quality assurance in a manufacturing firm is basically a process, right, ये आपने जो डिवाइड किया बेसिक किस पे डिवाइड करी उनको प्रोसेस कस्टमर पे होता है, तो देखिए कस्टमर की बेस पे डिपार्टमेंट बने हुए प्रोडक्ट और कस्टमर को मैं डिफरेंशिएट कर
दूं
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक उसने दिया था इंडिविजुअल कस्टमर को, यानी कि जो आपके कंज्यूमर उनको दिया था, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट का उन्होंने सेक्टर बनाया और एक उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर बनाया, गवर्नमेंट इज बेसिकली कस्टमर, कॉर्पोरेट लाइन इज बेसिकली कस्टमर एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर आर बेसिकली कस्टमर, अब उसके बेसिस में अगर आपने अपने डिपार्टमेंट बनाए हो तो देन यू आर गोइंग ऑन कस्टमर, ठीक है क्लियर हो गई बात, ज्योग्राफी
रीजनल ऑफिसर्स
कराची लाहौर इस्लामाबाद, क्योंकि एक से ज्यादा तरीके से डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, एक ही कंपनी के अंदर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पहले आपने उसको डिवाइड कर दिया रीजन में, फिर रीजन के अंदर आपने उसको डिवाइड कर दिया फंक्शन में, फंक्शन के अंदर शायद आपने डिवाइड कर दिया कस्टमर में, फिर या आपके डिवीजन के अंदर कस्टमर और कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट, कुछ भी कर सकते, इट कैन बी वाइस वर्स और इट कैन बी एज वेरी एज यू वांट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट कस्टमर से बता दो प्रोडक्ट को बता दो, लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग एप्लीकेशन से ई कॉमर्स का आपने अलग कर दिया, उसका अलग कर दिया, अगर मैं और कंज्यूमर बेस पे आ जाऊँ तो बिल्कुल, अगर मैं यूनिलीवर पीएनजी को ले लूँ, यूनिलीवर को ले लूँ, पीएनजी ने भी ये क्या है शैम्पू के प्रोडक्ट की एक डिपार्टमेंट आपके फिल्टर का एक उसका एक, हर डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके को हमने क्या बात की थी बेसिकली चेन ऑफ कमांड क्या है, क्या थी चेन ऑफ कमांड, जैसे उर्दू में बता रहे इसकी डेफिनेशन में आपको वो आया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ, इज द मैनेजर, दिस इज हेड मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, और इसके नीचे तीन लोग हैं और इसके नीचे तीन लोग, तो ये कभी टूट के इसको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करता, दिस मीन्स कि ये जो बंदा है यहाँ पे बैठे हुए, डी बंदा जो बैठा है वो हमेशा इसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, और ये अथॉरिटी जो है, ये कमांड जो है, टूट नहीं करती, अनब्रोकन लाइन होती है जब भी आपको बनाएगी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट चेन ऑफ कमांड के ऊपर से लेके नीचे तक किस तरह आपकी आप डिवीजन होगी, दिस इज बेसिकली व्हाट योर चेन ऑफ कमांड, ऐसे क्यों करते हैं, चेन ऑफ कमांड बनाना ही क्यों चाहते
हैं, डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी
जी, कंप्यूटर को कैसे बैठ गए तो सारा तो काम जरूर करेगा नहीं दिन भर, और जो हमारी नॉर्मल सेटो की कंपनी है ना उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें इतनी स्तर की प्रॉब्लम है कि ये वो उसमें प्रॉब्लम वो भी इसीलिए रही है कि वो अपनी पावर किसी और को देना नहीं चाह रहा, वी वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है जी, अकाउंट फीस को देखनी है, चेकबुक फीस को साइन करनी है, बिल भी वो बंधन आ रहे हैं, उसको ये भी करना है, वो भी करना है, मार्केट रिव्यू भी वो करनी है, तो ये किस तरीके से अगर मैं स्टेट ऑफ कमांड में जा रहा है तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो अंदर आनी चाहिए वहां के लिए चार्ट, उसकी वजह ये यार मानव दुनिया में बेमानी बहुत है, बट स्टिल यू कैन डू मस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट अदर्स, अदरवाइज यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। देखिए अगर आपने कंपनी के अंदर अथॉरिटीज पास नहीं करी, अब तक एक्सटेंडेड अथॉरिटीज पास करे, अगर आपने नहीं अथॉरिटी पास करी तो वो ये तो काम रह जाएगा, ठीक है जी, या फिर आपको सही से नहीं चला, नॉट मेक योर कंपनी अ बिगर कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज, अगर मेरे यहाँ चार लोग हैं तो ठीक है जी, मैं उनको शेयर इफेक्टिव भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे 200 लोग हो गए, आई कांट मैनेज इट इफेक्टिवली, आई नीड टू ग्रुप देम अप सो दैट मुझे ऊपर लेवल की चीजें पता लगे और मैं बेसिक चीजों पे लगा, ठीक है जी। अच्छा व्हाट इज एन अथॉरिटी, ये चेन ऑफ कमांड हमें एक चीज देती है, ये चेन ऑफ कमांड हमें अथॉरिटी देती है, किनको अथॉरिटी देती
है, पीपल,
कौन से लोगों को, कौन से पीपल, हर एक को बेसिकली मैनेजर,
हायर है,
ये हायर इन द लेवल, जो लोग हायर इन द लेवल होते हैं उनकी मोर पोजीशन, उनकी पोजीशन ज्यादा ऊपर होती है और उन उन लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको ओबे करें, ठीक है जी, तो ये अथॉरिटी रहती है। दूसरी चीज ये है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कभी ब्रेक नहीं होती, यूनिटी ऑफ कमांड मीन के एक सबऑर्डिनेट का हमेशा एक ही सुपीरियर होता है, जब एक से ज्यादा सुपीरियर होंगे क्या पता हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा आदमियों को रिपोर्ट करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर से मुझे दो सुपीरियर है उनके दरमियान प्रॉब्लम, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें यही होता है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज व्हेन यू हैव मोर देन वन बॉसेस, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फॉर्म्स में, तो आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट में आपका एक हेड कोई और होता है, उसके अलावा आपका डिपार्टमेंट में सेकंड होता है, एट द टाइम यू आर परफॉर्मिंग बोथ ड्यूटीज, तो अब क्या है कि प्रोजेक्ट हेड को माना जाए या तो बेसिकली डिपार्टमेंट हेड को माना जाए, तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि चेन ऑफ कमांड क्या है, चेन ऑफ कमांड दो चीजें बताइए, क्या चीज बताइए सबसे पहले कि कौन किसको ज्यादा अथॉरिटी हासिल है बेस्ड ऑन द पोजीशन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड द यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी रिलाई ओनली ऑन वन हेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या बताया ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है,
नंबर ऑफ पीपल,
अगर मैं आपसे ये करूं ए दिस इज जी पी डी जो डी है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या
है,
तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल इज टू, व्हाई, बिकॉज ई एंड एफ आर रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू डी, मेरे अगर आप कहना चाहें तो एच भी तो उसके अंदर आ गया, जी भी तो उसके अंदर आ गया, लेकिन हाँ अंदर है इसके नीचे मौजूद है, लेकिन इसको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर, कितने लोग मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे कि मेरा क्या है बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल,
मगर जी उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर तो सकता है,
हाँ जी उसको कर सकते हैं, मैं हमेशा प्रिफर ये करूंगा अगर एक मैं अच्छा मैनेजर हूँ, मैं डी हूँ और मैं अच्छा मैनेजर हूँ, मैं हमेशा प्रिफर करूंगा कि जी जो भी प्रॉब्लम जी को है वो जाकर किसको रिपोर्ट करे, ई को रिपोर्ट करे, एंड ई विल ब्रिंग अप टू मी, आई एम, आई वांट टू बी वेरी ओपन, आई नीड टू क्रिएट ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम डी टू आई, याद है तैमूर को शायद याद हो या बशीर को शायद याद हो, कि मैंने लास्ट टाइम मिट्टा विज्ञान ने एक माइक्रोसॉफ्ट का केस किया था, माइक्रोसॉफ्ट का केस में बेसिकली ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर वो चला गया, विरोध को नहीं कहना चाहिए हम जो काफी विशेष, उन्होंने क्या किया था, वो ओपन होने पे इतने ओपन हो गए थे कि उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस बिल गेट्स साहब ने सबको दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जिसको जो प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्टली बोल दिया करे, और ना कि ये सिर्फ जब उनकी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुई किसी मैगजीन से, तो उधर भी उन्होंने डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स को कस्टमर्स को बोल दिया थी मैगजीन के थ्रू कि अगर आपको कोई डायरेक्ट कंप्लेंट हो रही है ये मेरी पर्सनल ईमेल एड्रेस है, कैसी पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल ईमेल एड्रेस है, इनकी डायरेक्ट इतने स्पैम आने शुरू हुए थे उधर, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. तो व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्टली, यू नेवर वॉच कि ये आपकी जो अंडर की अंडर जो अंडर है वो अप डेफिसिट हो गया. इट्स अ प्रॉब्लम. हाँ, ये एडवांटेज भी देता है. हो सकता है कि ई माई बी बिकमिंग बायस, तो यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू हूम शुड बी रिपोर्ट. सो माई बी डी बट सडनली इसकी जो ये प्रॉब्लम होते हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होते हैं, ये छोटे प्रॉब्लम होते हैं और उनको वो बिगर प्रॉब्लम हो गए. ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल इसके नीचे तीन है, इसके नीचे दो है, इसके नीचे दो है. कितनी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे? वन टू थ्री फोर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या बता रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कितने हैं. ना कि सिर्फ स्पैन ऑफ कंट्रोल ही अकेले बताता है, बल्कि चेन ऑफ कमांड में कमांड. अगर चेन ऑफ कमांड को भी देख लो तो उससे भी आपको लेवल पता लगता है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसके ऊपर आ रहा है, उसका आपको कभी बता देंगे कि बस उसमें फर्क ये है कि कितने लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे वो आपका क्या है. चेन ऑफ कमांड में फर्क सिर्फ ये है, चेन ऑफ कमांड में डायरेक्टली कितनी चेंज है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है ये मुझे पता लग रहा है. ठीक है जी, कौन किसके ऊपर है मुझे ये पता लग रहा है. मुझे लाइन में यहाँ पर जितने पता लग रहा है कि बी जो है वो ई के ऊपर है, मुझे पता लग रहा है या नहीं लग रहा है. क्यों बी हो, क्यों बी ई से ऊपर
लेवल ऊपर,
कैसे आपको पता लग रहा है बी ई से ऊपर? क्योंकि ई रिपोर्ट कर रहा है किसको? बी को. और बी जो है वो बी और बी जो है इस लेवल पे मौजूद है, इसलिए बी ई से ऊपर है. ये तेरह सवाल है. अब मेरे नीचे डायरेक्टली कितने एम्प्लॉइज हैं ये तो मुझे बी के नीचे देख के पता लग जाए, मेरे नीचे कितने डायरेक्टली मुझे अपने नीचे देख के पता लगेगा. मेरे उन्हीं पर चेन ऑफ कमांड आपको ये बताएगा कि कौन सी पोजीशन किसकी मौजूद है. अथॉरिटी आपको चेन ऑफ कमांड से ये बताती है कि कौन सी पोजीशन आपकी मौजूद है. और आपका पैन ऑफ कंट्रोल ये बताता है मेरे अंडर कितने एम्प्लॉइज डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करें, दैट्स बेसिकली माय पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है. अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये लगा लिखा है, इसको प्लीज विस्तार कर दीजिएगा, मैं आपकी साइड से हटा दूंगा. लार्जर लेवल ऑफ स्पैन मींस इट्स मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. हाउ? लार्जर लेवल ऑफ स्पैन मींस इट्स मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. हाउ? मेरे नीचे जितने ज्यादा लेवल का बड़ा लेवल का स्पैन होगा वो कॉस्ट के लिए ज्यादा होगा. क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसी बात? क्यों अगर मेरे अगर यही मेरे नैरो स्पैन कर दूं तो उसमें क्या होगा? हर अब मेरे पास बन गए आठ हो गए, आठ हो गए, उसके नीचे आठ रख दिया, कौन सा स्पैन है? लास्ट लेवल ऑफ स्पैन है. ठीक है जी, अब मैंने क्या किया? No, make it smaller square. Four, इसके नीचे एक बंदा ऊपर चाहिए होगा एक बंदा, एंड फोर इसके ऊपर एक बंदा चाहिए होगा. अब कितने लोग हो गए? आठ और दो दस. एफिशिएंसी तो बढ़ गई लेकिन क्या बढ़ रही आपकी कॉस्ट? और कैसे बढ़ी आपकी?
दो मैनेजर
चाहिए और बंदा चाहिए, मैनेजमेंट कॉस्ट पे दो बोलते हैं. तो ये बताना था
मैनेजर स्लो कर देते हैं
लेकिन कभी कभार यही आपकी लिए एडवांटेज होता है. आप उस कॉस्ट को दीजिए जी, तो आपने सबसे पहले तो ये मेजर करना है आपके लिए कॉस्ट इश्यू है या आपके लिए एफिशिएंसी का है. ओके, यहाँ से बात सबसे क्लियर हुई है. इज इट एनीथिंग डिफिकल्ट? व्हाट इज स्ट्रैंगुलाइजेशन? अभी बात की कंडीशन टू मेक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. If decision is only to be the head management of the firm, then it means it is centralized. When you give empowerment to your employees to make decisions on their own basis, then you are basically moving towards a decentralization organization. What is the advantage and what is the disadvantage? Agar centralization hogi, advantage kya? Decentralization pe you cannot account it. अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किसी का कुछ नहीं है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म्स में ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज आर मोर एंथुसियास्टिक अबाउट देयर वर्क एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क इज मोर रिस्पांसिबल.
नहीं वो मैच्योरिटी
उनकी रिसर्च पे क्या फर्क है आपको सिंपल है सिंपल पॉजिटिव फिगर या तो आपको इट्स अ बूलियन फिगर या तो आप आईएसओ सर्टिफाइड हो या नहीं हो मेरे चैनल नोट गिव यू अ मैच्योरिटी लेवल आई थिंक
अप्रेजल दो
3 4 5 व्हाट बेस्ड ऑन द प्रोसेस इंस्पेक्शन. अब मैं ये पूछ रहा हूं कि एमएम लेवल 2 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब हम बात करते हैं ये सारे स्ट्रक्चर. अब जो हमने चीजें पढ़ी है डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन और हमने क्या पढ़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल चेन ऑफ कमांड सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन और क्या पढ़ा हम लोग वर्क स्पेशलाइजेशन इनकी बेसिस पे स्ट्रक्चर लेट्स सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विल आइडेंटिफाई कौन सा स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट जो या तो बिल्कुल यू एक या दो या तीन डिपार्टमेंट हो या बिल्कुल भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
करती
है. क्या डिपार्टमेंट होगा जैसे हम बात कर रहे थे क्या है वो आपके सिंपल स्ट्रक्चर है ये ऐसा स्ट्रक्चर और उसकी नीचे अच्छा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होगा फॉर्मलाइज होगा अनफॉर्मलाइज क्यों अनफॉर्म लाइट ये चल रही है वो आपको नजर आ रहा
है
क्यों अनफॉर्म लाइट हो
क्योंकि हायरार्की इतनी ज्यादा नहीं है तो इसको रिकॉर्ड करना वो एक ही बंदा है
और एक्चुअली कौन सी ये कि मैं इतना ज्यादा वो मैं कभी पाया नहीं हूँ इसलिए ऐसे तो आई विल बी सो मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई कैन नॉट बी वेरी फॉर्म लाइक ये आई हैव टू गिव अ बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन एवरीवन टू द वर्क ऑन देयर ओन बेसिस वेयर इज द स्टैंडर्डाइजेशन द अथॉरिटी वुड डेफिनेटली लाई ऑन मी जब भी मैं किसी को रिलाय नहीं कर रहा जब भी उसको डिपार्टमेंट में रिलाय नहीं कर रहा क्या होगा कि अथॉरिटी एक के पास है स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी हमने एक बात नोट करी कि जब ऑर्गेनाइजेशन को बोलते तो वी डेफिनेटली वांट इट टू बी परमानेंट ये नहीं चाहते कि कुछ हफ्ते में हम उसको बंद कर दें ये एक रिस्की फैक्टर है ऑफकोर्स इट्स वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा मैं ये कर सकता हूँ ये सिंपल बहुत सिंपल है काम ज्यादा अगर अच्छे तरीके से ये बंदा मैनेज अच्छे तरीके से करे तो काम ज्यादा फास्ट हो सकता है मुझे अप्रूवल चाहिए मुझे अपने बॉस को नहीं देखो अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें डिपार्टमेंट जिसके अंदर जो अथॉरिटी है ना वो बहुत ज्यादा मुझे कुछ चीज अप्रूव करानी मैंने इनको दिया इसकी बेसिस पे भी नहीं ये भी नहीं कर सकता था
गवर्नमेंट
इसने अपनी जब देखी तो ये चीज तो ये भी अप्रूव कर पा रहा था तो उसने क्या किया टाइम क्या लगेगा अदरवाइज अगर मुझे इसकी अप्रूव करानी मैंने डायरेक्टली उसको दे दिया तो इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा आपके लेवल हो ना तो आपको थोड़ी सी अथॉरिटी को पास करना पड़ता है ऐसे लोगों को धोखा भी बहुत मिला ठीक है जब मैं सारी चीजें नहीं देख सकता तो फिर मैं प्रॉपरली नहीं देख सकता तो डेफिनेटली मैं कहूंगा तो मैं किसी को एक तरीके से मैं किसी को एक डिफिकल्ट टू मेंटेन इफ नॉट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने बात कर ली है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लगी टॉप पे रिस्की डिपेंडिंग अपॉन हमारी पास हमारी आगे पीछे कोई नहीं था तो बेचारा ऑर्गेनाइजेशन आती गई छोटा बच्चा था इनका कोई तो क्या होगा
Everyone has the power.
According to customer, can be divided according to the functions, can be divided upon the process itself. Whereas division will always be divided according to the division. हमने example दी थी functions क्या है आपके HR is a function, marketing is a function, IT is a function, and then we have finance is a function. ये सारे जो departments हमने divide किया तो ये functional organization है लेकिन कौन सी department क्योंकि department बनाए हुए तो bureaucratic structure और फंक्शन स्ट्रक्चर कौन सी थी कस्टमर का भी हो सकता है अगर मैंने तीन कस्टमर में डिवाइड कर दिया कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इवन दो तो देन इट अगेन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हवाले से भी डिवाइड कर दूं देन अगेन इट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोसेस के हवाले से डिवाइड कर दूं तो वो भी कौन सा होगा प्रोसेस के हवाले से क्या चीज होगी प्रोसेस क्या है
तो QA is a process.
Process is basically a way to achieve one thing. If you, अब मैं एक पर पहले मैं बना रहा हूँ, let's make अजीम, ठीक है जी? Let's make अच्छा चलो ये छोड़, software की बात, let's make a software. Software process के अंदर कौन से तो हुई है? Software के अजीम में, software process के अंदर basic क्या क्या processes हो रहे हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक सिंपल प्रोसेस हो रहा
है रिक्वायरमेंट रिक्वायर
जी रिक्वायरमेंट क्या
रिक्वायरमेंट
एनालाइज कर दिया डिजाइन कर दिया कोड कर दिया टेस्ट कर दिया और क्यूटी जो है क्यू जिसकी आवाज है क्वालिफिकेशन वहां जगह इंटीग्रेटेड होगा राइट अब इस प्रोसेस के थ्रू अगर मैंने अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस को ही पांच इंस्ट्रूमेंट एनालिस्ट डिजाइनर कोडर टेस्टर एंड मेंटेनेंस पॉइंट अगर मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है तो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तो बेसिकली क्या है प्रोसेस है ना सॉफ्टवेयर कौन से प्रोसेस है या अगर मैं गाड़ी बनाता हूँ गाड़ी बनाने के लिए जो जो प्रोसेस यूज होता है हर प्रोसेस का मैंने डिपार्टमेंट बना दिया तो एक बेसिकली प्रोसेस है फंक्शन क्या है वो बेसिकली जो बिजनेस को रन करने के लिए फंक्शन चाहिए अब एक बिजनेस में मेरे पास लोग भी होंगे क्या है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अब एक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है तो मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चाहिए एक ये फंक्शन Can you divide your organization in terms of areas, in terms of geography? For example, Pakistan को north, west, south, east. ये कराची को south, west, east.
नहीं sir, product. Pakistan को product based भी होता है division.
उन्हें भी होता है. तो बात हमने पहले भी की है कि आप division के अंदर product भी डाल सकते हैं, आप division के अंदर customers भी डाल सकते हैं, आप division के अंदर
तो same ही तो होगा division
का. Division is basically when you divide your organization in terms of geography. जहाँ geography आती है वो division है. अब geography के अंदर आपने functions को लेके आ गए. अब geography के अंदर नीचे आ गई IT department, marketing department, finance. तो पहले geography के लिए divided था, फिर functionally divided. ये होगी geography is only when division is only when you divide it in terms of geography. ये उसको हम मैं आपको यही जाता हूँ कि जब आप बुक अब यही होता है कि आपने कहा कि लेकिन फाइनेंस डिवीजन मौजूद है एचआर डिवीजन मौजूद है और आप कहता हमारा डिवीजनल स्ट्रक्चर है अगर आप ये लिखो कि डिवीजनल स्ट्रक्चर यूज स्टेट कर रहे हैं डिवीजन मीन इट्स नॉट अ डिवीजनल स्ट्रक्चर एचआर डिवीजन तो उसका नाम है इट्स बेसिकली अ फंक्शनल स्ट्रक्चर आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशनल हेड से पूछेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करेंगे अब आपको जानना है आपको आइडेंटिफाई आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंपल स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कौन सा स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो ब्यूरोक्रेटिक के अंदर फंक्शनल है डिविजनल है अगर ब्यूरोक्रेटिक के अंदर फंक्शनल है तो फंक्शन के अंदर क्या बाय कस्टमर है बाय प्रोडक्ट है By your process है by your function है आपको ये भी लिख सकते हैं तो और मुझे किस तरीके से पता लगेगा आप सही कह रहे हैं आपने वो स्ट्रक्चर जो है मुझे ऑन द ग्राफ कैसे कहते हैं आपने वो दिया ठीक है जी देरों की बात आपसे ओके तो बेस क्या है कि हमने बात कर ली फंक्शनल और डिविजनल फंक्शनल में कस्टमर के थ्रू भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया था कैसे होगा कस्टमर के थ्रू आप मुझे बता दो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने सिर्फ मैं मार्केट करूँ कराची ठीक है जी क्या भी क्या नहीं रहेगी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो देखो कौन सा है अब तक डिविजनल अब डिविजन के अंदर आते कराची के अंदर लेती
फंक्शनल
डायरेक्ट कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट। अब क्या होगी
the economic size, the growth, the buying power of an individual. So
सारी चीजें सोच ही लू मेरे पास नॉट कोऑपरेटिव मुझे अच्छा लग रहा है लाहौर में भी मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर को डालते हैं क्या मेरे पास एक्सपर्टीज मौजूद है क्या